बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोग अपने विचारों को अत्यंत सुदृढ़ और स्थिर बनाकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। विचारों को सुदृढ़ और स्थिर बनाने के लिए जरूरी है कि हम विचारों की निरंतरता को बनाए रखें, विचारों का सातत्य। ये इससे तो मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा। ओम नमः। विचारों की निरंतरता से विचारों में दृढ़ता आती है और स्थिरता आती है। और कोई भी चीज अगर बहुत सुदृढ़ और स्थिर हो तो उसके इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। जैसे दीपक की लौ, अगर हवा चलती हो तो प्रकंपित होती रहती है, और ऐसी प्रकंपित लौ के ऊपर हाथ भी रख लें तो उससे ज्यादा अहित नहीं होता। और इतना ही नहीं, ठीक ठीक प्रकाश भी वो नहीं दे पाती। और अगर वही लौ स्थिर हो जाए तो वह पर्याप्त मात्रा में प्रकाश भी देती है, और यदि हम उससे किसी चीज को गर्म करना चाहें तो वो ऊष्मा भी देती है। प्रकाश और ऊष्मा दोनों जैसे हमें स्थिर लौ से प्राप्त होते हैं, इसी तरह हमारे विचार अगर लगातार किसी एक ही चीज को लेकर हम करते हैं तो वे दृढ़ और स्थिर हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में एक दृष्टि प्राप्त होती है और वो दृष्टि हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। सहसा ऐसा लगेगा कि क्या दृष्टि हमें विचार के द्वारा मिलती है या कि दृष्टि मिलने पर हमारे भीतर विचार उत्पन्न होते हैं। हम देखें तो विचारों को समीचीनता भले ही दृष्टि देती है, लेकिन दृष्टि तो बिना विचार के उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जिन जिन जीवों के विचार की सामर्थ्य है वही जीव दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास विचार की सामर्थ्य यानी मन ही नहीं है उन जीवों को दृष्टि की निर्मलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमारे अंदर जो विचार हैं वे हमें एक निश्चित दिशा एक निश्चित दृष्टि देते हैं, और जैसे जैसे दृष्टि में निर्मलता आती है हमारे विचार भी समीचीन होते चले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को दृढ़ और स्थिर बनाएं, जिससे कि हमारी दृष्टि ठीक हो। एक उदाहरण है, सबको मालूम है, सुकुमाल राजकुमार थे और उनकी परवरिश उनकी मां ने बहुत कोमलता पूर्वक की थी, और उस परवरिश के चलते वे इतने अधिक सुकोमल जीवन को जीने के आदि हो गए थे कि उनके आसन पर यदि एक छोटा सा सरसों का दाना भी पड़ा हो तो वो भी उन्हें चुभता था। और एक दिन जब राजा ने उनसे मिलने की सोची और वे आए, तो मां ने जब राजा की आरती उतारने के लिए दीप जलाया तो उस दीप की लौ देख करके भी सुकुमाल की आंख में आंसू आ गए। और जिस आसन पर राजा के साथ वे बैठे उस पर बार बार स्थिर नहीं रह पा रहे थे, बार बार अपना आसन बदल रहे थे, और जब भोजन करने बैठे तो एक एक चावल का दाना बीन बीन करके खा रहे थे। तो राजा ने जाते समय उनकी मां से इतना ही कहा था कि लगता है आपका बेटा अस्वस्थ है, आप उसका ठीक से वैद्य से इलाज करवाएं। तब मां ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बात यह है कि वो बहुत कोमल है और दीपक की लौ तो उसने कभी देखी नहीं, वो तो रत्न के प्रकाश में बड़ा हुआ, बाहर सूरज के प्रकाश में भी कभी वो निकला नहीं, हमने उसकी परवरिश अपने महल के अंदर ही की। वो कमल पत्र के ऊपर भिगोए गए चावल पकाए जाते हैं उन्हें ही खाता है, आज चूंकि आप आने वाले थे इसलिए कमल पत्र पर इतने चावल तो नहीं भीग सके, तो कुछ चावल उसमें अलग से मिला दिए गए थे, वो उनमें से कोमल चावलों को ही खा रहा है और बहुत सुकमाल तो है ही, इसलिए सरसों का दाना शायद उसके आसन पर पड़ा होगा, वो चुभ रहा है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इस तरह का जीवन जीने वाला व्यक्ति हम इससे क्या आशा रख सकते हैं। हमें लगता है कि ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति से अपने कल्याण की कोई आशा नहीं रखी जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन जब उनके ही पिता महाव्रत धारण करके और महल से कुछ दूर उद्यान में अपना चतुर्मास पूर्ण करके अंतिम दिन भगवान की स्तुति सुबह सुबह कर रहे थे, वह स्तुति उनके कान में पड़ जाने पर एक विचार मन के भीतर अपने कल्याण का उत्पन्न हुआ, और वह एक छोटा सा विचार रात जैसे अंधेरी निकल जाने पर एक छोटी सी प्रकाश की किरण भी जीवन में उजाला देती है, वैसा ही उस विचार ने पूरी दृष्टि को बदल दिया। और अब वे चुपचाप बिना किसी को बताए और खिड़की के रास्ते से नीचे उतरकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। उनके पैर छिल गए हैं, उसमें से रक्त बह रहा है, जाकर के मुनि दीक्षा लेकर के एकाग्र ध्यान में स्थिर होकर के खड़े हो जाते हैं। श्यालिनी अपने दोनों बच्चों के साथ उनका भक्षण करना शुरू करती है, पैरों से उन्हें खाना शुरू करती है। इसके बाद भी वे अपने आत्म ध्यान में लीन हैं। इन दोनों स्थितियों में इतना अंतर जो दिखाई पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? वह विचार की सामर्थ्य, एक विचार मन के भीतर आया कि मैं अपना आत्म कल्याण करूंगा, और वो विचार इतना सुदृढ़ और इतना स्थिर हुआ कि उसने दृष्टि बदल दी। कल तक जो अपने शरीर में आशक्त था, वो आज अपने शरीर से इतना निष्प्रय हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? होते हुए तो दिखाई देता है, घटित होते दिखाई देता है। हम चाहें तो ऐसे ही अपने विचारों में दृढ़ता लाकर अपनी दृष्टि को परिवर्तित करके अपने पूरे जीवन को, जो हम अपने जीवन को जैसा अच्छा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। विचारों की ऐसी और इतनी सामर्थ्य है। असल में हमने ये मान लिया है कि वातावरण हमारे फेवर में नहीं है, या हमने ये मान लिया है हमारा शरीर यह सब साधना और तपस्या करने में सक्षम नहीं है, और यह कि हमने ये मान लिया है कि सब कुछ करने के बाद भी सुनने में तो यही आता है कि इस जीवन में मोक्ष तो होने वाला नहीं, तो काहे को इतना सब कुछ परिश्रम किया जाए? ऐसा जो हमारा एक विचार है, वो विचार हमारे जीवन को ऊंचाई की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि हमारे लिए पतन में ही कारण बनता है। क्यों ना हम एक ऐसा विचार अपने भीतर उत्पन्न करें कि मुझे जो देह मिली है वह भले ही कमजोर हो, मैं उससे कितना कर सकता हूं, यह मैं अपनी क्षमता पहचानूं और अपनी क्षमता पहचान कर उसे बढ़ाऊं। यह जो वातावरण मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है, वह मुझे ज्यादा सहयोगी नहीं है, पर क्या मैं इस वातावरण में रहकर भी अपने जीवन के लिए थोड़ा बहुत ऊंचा उठाने की कोई प्रक्रिया कर सकता हूं? ठीक है, आज मुक्ति नहीं है, लेकिन मैं आज वर्तमान में भी कितना अधिक आकुलताओं से बचकर निराकुलता का अभ्यास कर सकता हूं? यह एक विचार है। अगर हमारे जीवन में हम विकसित करते हैं और निरंतर इस बात को बनाए रखते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम इन छोटी छोटी सी मुश्किलों से बच करके और अपने जीवन को अच्छा ना बना पाए। हम सब जानते हैं कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा हमारा जीवन बनता चला जाता है। जैसा जीवन है, मानिएगा, वो हमारी ही दृष्टि का परिणाम है, वो हमारी ही चॉइस है। अपन इस उदाहरण को कई बार समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति अगर बगीचे में पहुंचता है और वो फूलों को बेचने वाला है, तो वृक्षों पर आए हुए फूलों पर ही उसकी दृष्टि होती है कि कितने कीमती हैं, मैं उन्हें तोड़ करके ले जाऊं तो उसकी कितनी कीमत मैं प्राप्त कर सकता हूं। लकड़ी बेचने वाले को उन फूलों के सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है, उसे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि वृक्ष के सूख जाने पर और इससे कितनी लकड़ी और कितनी कीमत की लकड़ी प्राप्त हो सकती है। और वहीं पर अगर कोई व्यक्ति जो कि प्रकृति से प्रेम रखने वाला है, वो खड़ा हुआ है, वो क्या सोचेगा कि कितने सुंदर हैं ये वृक्ष, उनमें लगे हुए फल फूल, वो उनकी सुंदरता को देखेगा। और अगर एक कोई दार्शनिक है, वो क्या सोचेगा? वो अपने हिसाब से सोचेगा, उसकी दृष्टि में ये दिखाई पड़ेगा कि इस तरह अपना जीवन शुरू करते हैं लोग और एक दिन अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, ये साइकिल, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। पत्ते हरे हो रहे हैं, पीले पड़ करके, सूख करके झरते चले जा रहे हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन की क्षणभंगुरता का विचार भी वहां किया जा सकता है, वहीं पर जीवन में आसक्त भी हुआ जा सकता है, वहीं पर जीवन जीने के अपने आजीविका के साधन भी ढूंढे जा सकते हैं। यही हमारे अपने जीवन का चित्र है। हम यहां अपने इस जीवन को चलाने के लिए सिर्फ आजीविका के साधन ढूंढते हैं, या कि हम अपने इस जीवन के और आसपास के वातावरण के सौंदर्य में ही अटक करके आसक्त होकर के रह जाते हैं। कोई है जो कि वृक्षों से पीले पड़ते पत्तों को झरते देख करके ऐसे ही जीवन की क्षणभंगुरता का विचार करता है। हम चाहें तो ऐसा विचार हम भी कर सकते हैं, और जैसे ही ये विचार हमारे भीतर उत्पन्न होता है कि यहां इस दृश्य जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, क्षणभंगुर है, हमारे मन में उसे बचाने का भाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यहां सब चीजें नष्ट हो जाने वाली हैं, मैं कोई उपाय करूं जिससे कि उन्हें बचा सकूं। सुनते हैं कि मुझे भी एक दिन यहां मरण को प्राप्त करना पड़ेगा, मुझे भी मरण प्राप्त होगा, तब फिर मैं मरण से बचने के लिए उपाय खोजूं। यह एक विचार हमारे भीतर इस क्षणभंगुरता के बाद संभव है कि उत्पन्न हो सकता है, होता ही है। जैसे ये मालूम पड़ता है कि हर चीज नष्ट हो जाएगी, एक बहुत सहज सी हमारे भीतर उत्सुकता होती है कि अगर ऐसा है तो इससे बचने का उपाय क्या है, और फिर हम अपनी छोटी हमारे पास पद प्रतिष्ठा होगी, वो हमें सुरक्षा देगी। मंत्र इत्यादि विद्याएं ये भी हमारे जीवन को सुरक्षा दे सकती हैं। ऐसा विचार आने पर हम मंत्र और विद्याओं का भी आलंबन लेना शुरू कर देते हैं। ये सारे आलंबन लेकर के हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अब सुरक्षित हो गया, लेकिन हम सबके जीवन का कई कई बार का यह अनुभव है कि इन सब का आलंबन, इन सब का सहारा भी हमें कितना असहाय और कितना असुरक्षित और कितना अशरण बनाए हुए है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे अपने व्यक्ति जिनको कि हम बहुत अपना मानते हैं, एक दिन जब सांसें पूरी होने लगती हैं तो उन्हें मरते हुए देख करके हम असहाय, हाथ बांधे सिर नीचे झुकाए खड़े रह जाते हैं। हम उन क्षणों में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किसी को मृत्यु से क्या हम आज तक बता पाए हैं? हमारा अपना पुत्र कितना ही हमारा सगा क्यों ना हो, क्या जीवन के अंतिम क्षणों में हमारे लिए और भी जो जीवन की रक्षा के बाह्य उपाय हैं वो भी कर सकता है, लेकिन हमें जीवन तो नहीं दे सकता। जीवन जीने के लिए जिन सांसों की आवश्यकता है वो तो नहीं दे सकता। ये उसकी सीमा है, क्यों ना हम उसकी इस सीमा को पहचाने। जो जो यहां पर संसार में हमारे बचने के उपाय हैं उन सबकी एक सीमा है, वे हमें पूर्णतः सुरक्षा नहीं दे सकते। सिकंदर आखिरी समय जिसने कि सारे संसार में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए बहुत हिंसा करी, बहुत प्रयत्न किए, और आखिरी समय जब वो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, मृत्यु सैया पर, उसे अपने मां के मिलने की बहुत इच्छा है, और उसकी आखिरी समय में एक ही इच्छा वो प्रकट करता है कि मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, इन क्षणों में मुझे सिर्फ मेरी मां से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसका इंतजाम करो तुम सब। सैनिक खड़े हुए हैं, राजवैद्य खड़े हैं, हकीम खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, उन सब से वो एक ही चीज कह रहा है कि जहाज बस आने को है, मां उसमें मेरे पास तक शीघ्र आएगी, लेकिन उतनी देर के लिए मुझे मृत्यु से बचा सको तो बचा। आधे घंटे के लिए कोई मुझे सांस दे दे। सब असहाय खड़े हुए हैं, इतना असुरक्षित हमारा जीवन है, लेकिन इसके बाद भी हम सचेत नहीं होते, बल्कि आलंबन ही आलंबन, सहारा ही सहारा ढूंढते रहते हैं। अत्यंत परावलंबन का जीवन हम जीते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, जो हम सहारा लेते हैं, जिनका हम आलंबन लेते हैं, उनके प्रति हम आशक्त हो जाते हैं, उनके होने पर हम गर्व करते हैं, वे और अधिक मात्रा में हो इस बात के लिए चिंतित रहते हैं। कितनी चीजें हो गई, मैंने आशक्ति बढ़ाई, मैंने व्यर्थ अहंकार किया, मैंने चिंता करी उन आलंबनों को लेकर के जिनसे कि मेरी कभी सुरक्षा नहीं हो सकती। मजा देखिएगा, सारा जीवन उसी में व्यतीत हो जाता है, उन सहारों को जो कि वास्तव में मुझे मृत्यु से नहीं बचा पाएंगे, उन सब चीजों को पाने के लिए। कहते जरूर हैं कि दलवल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखन, पर लगता तो यही है कि ये सब मेरी सुरक्षा करेंगे, तब ना मैंने इन सबको जोड़ जोड़ के रखा है, इन सब में अपना मोह उड़ेल करके रखा है, इन सब को लेकर के मैं चिंतित होता हूं, इन सब के होने पर मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, बहुत गर्व करता हूं इन सब के होने का, लेकिन क्या ये मेरा मोह, क्या ये मेरा अहंकार, क्या ये मेरी चिंता ठीक है? ये जो आलंबन मैंने लिए हैं, क्या वो मुझे सचमुच बचा पाएंगे? ये जो कुछ भी मैंने इकट्ठा कर रखा है, उस सब से मेरी सुरक्षा हो जाएगी क्या? क्या दे पाएंगी ये सारी चीजें हमें, सांसें दे पाएंगी? पूरी जिंदगी जिसने साम्राज्य पाने के लिए प्रयत्न किया, एक दिन वही राजा सुनते हैं जंगल में भटक गया, भटकने के बाद पानी की वेदना से व्यथित आसपास पानी खोज रहा है, अपने सैनिक को भेजा तो पास की झोपड़ी में कोई एक फकीर था, उससे कहा कि राजन प्यास से बेहाल हैं, हो सके तो आप पानी दे दें। उन्होंने कहा क्या देंगे वो मुझे, आप जो मांगेंगे वो देंगे, आधे ग्लास पानी दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि आधे ग्लास पानी अगर आप देते हैं तो हम आधा राज्य दे देंगे। तो कहा कि यदि मैं पूरा ग्लास पानी भर के दे दूं तो कितना देंगे, पूरा साम्राज्य दे सकते हैं। बहुत जोर से हंसा वो फकीर राजा के पास खड़े होकर कि समझ में आया, जिसका तुम अहंकार करते, जिसमें तुम इतने आशक्त हो, जिस राज्य के लिए तुमने इतना अपना जीवन गंवाया, उसकी कीमत कुल कितनी है, एक गिलास पानी। मैं एक गिलास पानी तुम्हें दे रहा हूं और तुम पूरा साम्राज्य देने तैयार हो, जिस साम्राज्य के लिए तुमने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी सांसें व्यर्थ गंवा दी, आज उन्हीं सांसों को रक्षा के लिए तुम्हें एक गिलास पानी चाहिए, और पूरा तुम्हारा साम्राज्य भी तुम्हें सांस नहीं दे सकता अभी इस समय, एक गिलास पानी में तुम्हारा पूरा साम्राज्य बिक सकता। ऐसा अपन को सहसा समझ में नहीं आता, लेकिन हम अगर इस तरह निरंतर विचार करें तो वास्तविकता समझ में आएगी, और वास्तविकता समझ में आने पर चिंतित नहीं हो जाना कि अगर ऐसा सब कुछ होगा तब तो सब छोड़ना पड़ेगा, फिर एकदम ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि क्या हम सबको छोड़ दें, हम अपना परिवार छोड़ दें, रास्ते पर आ जाएं, रोड पर आ जाएं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा। ऐसा क्यों कहेंगे आचार्य भगवान? वे तो सिर्फ हमें स्वावलंबी जीवन जीना सिखाना चाह रहे हैं। ये जो हमारी पराधीनता है वे उससे मुक्त करने के लिए हमें सलाह देना चाह रहे हैं कि हम किस किस का सहारा, किस किस की बैशाखी लेंगे अपना जीवन जीने के लिए। हमें अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहिए, अपने जीवन जीने के लिए हमें बहुत स्वावलंबी जीवन पद्धति अपनानी चाहिए, क्योंकि यहां पर जितने भी सहारे हैं वे एक दूरी पर जाकर रुक जाते हैं, उससे आगे उनका प्रवेश ही नहीं है। और अगर हम किसी का आलंबन लेते हैं तो उसकी सीमाएं पहचाने, उसके होने पर हम अहंकार ना करें, और उसके द्वारा हमारे कार्य की पूर्ति ना होने पर हम संक्लेश ना करें, शिकायत से ना भरें कि मैंने इन सब को सोचा था कि ये मेरे अपने हैं और मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन इन सब ने भी मेरी रक्षा नहीं की। कागज की नाव डूब जाने पर ये शिकायत करे कि किनारों ने उसे धोखा दिया है, तो बताइएगा उसका ऐसा विचार क्या ठीक है? हम खुद कागज की नाव में बैठें और डूब जाएं तो किनारे और नाव को दोष देंगे क्या? नहीं, हमारा ही दोष है कि हमने कागज की नाव में बैठ करके नहीं डूबने का भ्रम उत्पन्न कर लिया था। हमने इन सब का आलंबन लेकर के अपने को सुरक्षित मानने का भ्रम पैदा कर लिया था। हम उस भ्रम को तोड़ दें और सबके बीच रहें, बहुत प्यार से रहें, लेकिन ऐसा ना सोच करके कि ये सब मेरे लिए मृत्यु से बचा लेने वाले लोग हैं, ये धन संपदा पद प्रतिष्ठा और मेरे अपने कहलाने वाले लोग मुझे मृत्यु से बचा लेंगे, ये भ्रम हम तोड़ दें तो फिर देखिएगा कि हमारे जीवन जीने का क्या ढंग होता है, बदल ही जाएगा। अगर ऐसी दृष्टि बदल जाएगी फिर किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी, और संसार में अगर दुख का कारण है तो अपेक्षा ही दुख का कारण है। हम जिससे जितनी अपेक्षा रखते हैं वो हमारी अपेक्षा हमारे कर्म के अनुसार ही पूरी होती या नहीं होती है, लेकिन हम निरंतर अपेक्षा के पूर्ति के अभाव में और दुखी ही बने रहते हैं। जितना हम आलंबन लेते हैं उतना ही हम दुख की तरफ जाते हैं, जितनी हम अपेक्षा रखते हैं उतने ही हम दुख की तरफ उड़ते चले जाते हैं। चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे और भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, श्री कृष्ण एक बाण के लगने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए, तीन खंड के अधिपति थे, कोई बचा सका? नहीं बचा सका। बलदेव हलधर कहलाते हैं, उनको कोई बचा सका? चक्रवर्ती को बचा सकता कोई? छह खंड के अधिपति को? तीर्थंकर का भी जीवन काल पूरा होने पर वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं, क्या उन्हें भी कोई संसार में रोक सकता उनकी आयु और देकर के उन्हें? नहीं रोक सकता। हमारी जितनी आयु है उतना हमारा जीवन है। ये विचार हमारे भीतर हमें निश्चिंतता देता है, ये विचार हमें स्वाधीन बनाता है। अशरण अनुप्रेक्षा हमें वास्तविक शरण क्या है इस दिशा में ले जाने के लिए एक दृष्टि देती। ये जो हमने आलंबन ले रखे हैं, ये जो हमने अपने आप को के लिए बचाने वाले सहारे ढूंढ रखे हैं वे वास्तविक नहीं है। वास्तव में अगर कोई शरण है, मेरे लिए सहारा है, तो वो कौन है? मेरे ही अपने परिणाम। मेरे बुरे परिणाम मुझे हमेशा असुरक्षा में डालते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति से आप खोटी बात कहिएगा, अगले क्षण आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? पता नहीं मेरी इस बात से बुरा मानकर वो मेरा कोई आहित ना कर दे। अब एक असुरक्षा का भाव, मेरे ही वो व्यक्ति मुझे असुरक्षित कर रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे अपने परिणाम मुझे असुरक्षित करते हैं और मेरे ही परिणाम मुझे सुरक्षा भी दे सकते हैं। मैंने अगर अपने भीतर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखी है तो वह श्रद्धा मुझे विपत्ति आने पर भी क्या एहसास कराती है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, कोई है जो हमारे साथ है, हम सुरक्षित हैं। ये कौन एहसास कराता है? ये मेरी अपनी श्रद्धा, मेरे अपने परिणाम। तो क्यों ना हम अपने उन परिणामों को ठीक ठीक बनाएं और अपनी सुरक्षा अपने हाथ से करें। किस किस से हम अपनी सुरक्षा के लिए हाथ फैलाएंगे, दीनहीन होकर के किस से अपनी सुरक्षा के लिए याचना करेंगे? नहीं, हमारे अपने परिणामों के द्वारा हम अपने को सुरक्षित बना सकते हैं, अपने ही परिणामों के द्वारा हम अपने को असुरक्षित बनाते हैं इस संसार में। एक विचार ये है। दूसरा ये है कि जिन्होंने अपने परिणामों को संभाल करके और अपनी उस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, बताइए सबसे सुरक्षित तो वे ही हैं। मुझे अगर अपनी सुरक्षा के लिए किसी का आलंबन लेना पड़े तो मुझे ऐसे ही किसी व्यक्ति का आलंबन लेना चाहिए जितने कि अपनी उस परम विशुद्ध अवस्था का, जिसने सारे परावलंबन छोड़ दिए हैं, जो बिल्कुल स्वावलंबी है, मुझे उसकी शरण लेनी चाहिए ताकि मैं भी स्वावलंबी बन करके और सुरक्षित हो सकूं। ऐसा विचार हमारे भीतर आना चाहिए। ऐसा विचार करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त भी हमें निकालना पड़ेगा। अभी तो अपन दो लाइनें पढ़ करके और सोचते हैं कि मैंने 12 भावना पढ़ ली। नहीं भाई, जब कोई हमें हमारे अपना व्यक्ति सुरक्षा दे, जब कोई पद प्रतिष्ठा ऐसा लगे कि हमें सुरक्षा देती है, जब और धन संपत्ति जो हमने संचित कर रखी है लगे कि ये सुरक्षा देती है, तब उसी समय अपने मृत्यु के भय से भयभीत होने के कारण ही अपनी सुरक्षा के उपाय ढूंढते हैं। और जिस दिन हमें ये मालूम पड़ जाए कि मृत्यु मेरा नाश नहीं कर सकती, वो सिर्फ देह को ही नष्ट कर सकती है, तब फिर चिंतित होने की क्या आवश्यकता? और जब मैं चिंतित नहीं हूं तो फिर इन सब का सहारा लेने की क्या आवश्यकता है जो बाहर दिखाई देने वाली चीज है? मेरी सुरक्षा मेरे अपने चेतना और मेरे अपने चेतना के परिणामों से है, और वो चेतना और मेरे अपने परिणाम संभालने के लिए कोई अगर है तो वो तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की हैं। इसलिए क्यों ना उन्हीं की शरण ली जाए, क्योंकि उनके शरण लेने से मेरे परिणाम संभलते हैं और मेरे परिणाम संभलने से मेरी चेतना सुरक्षित हो जाती है। ये एक छोटा सा विचार हमारे अपने भीतर, हमें धीरे धीरे करके इसको उत्पन्न करना पड़ेगा। सहसा जरूरी नहीं है कि सबके ये विचार समझ में आ ही जाए, क्योंकि अभ्यास तो संसार में सहारा ढूंढने का है भैया। सहसा इस संसार के सहारों को छोड़ करके कोई कैसे और अत्यंत अशरण महसूस करके और भगवान की शरण में आए, ये तो बहुत दुर्लभ है। भगवान की शरण में अपन सब आते हैं, लेकिन कभी ऐसा भाव आता है कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, ऐसा विचार तो नहीं आता? थोड़ी देर को आता है कि हाँ, ये भगवान भी शरण है लेकिन और सब भी मेरे अपने, वो भी तो मुझे कुछ थोड़ा तो सहारा देते हैं। अभी अभी उनकी तरफ से मैं अशरण महसूस नहीं करता, और जब तक मैं इस संसार में मुझे कोई भी शरण देने वाला नहीं है, इस तरह का अनुभव नहीं करूं, तब तक जो वास्तविक शरण है उसको मैं ठीक से स्वीकार ही नहीं कर पाऊंगा। अभी तो आधे अधूरे मन से सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण स्वीकार करते हैं अपन, बाकी तो संसार में ही सुरक्षा ढूंढते हैं। कभी विपत्ति से घबरा करके भगवान के चरणों में आकर के बैठे हैं? नहीं, विपत्ति से घबरा करके फोन पर फोन करते हैं कि ये मुश्किल आ गई, सॉल्व करो इसको। क्या होगा, भगवान की माला फिरने से क्या होने वाला? भगवान थोड़ी आकर के कर दे, करना तो मुझे ही पड़ेगा, और चार लोगों की मदद से ही मुझे अपनी विपत्ति से बचना पड़ेगा। ऐसा विचार आता है कि नहीं आता? आना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आना चाहिए, आता है, लेकिन उसी समय यह भी विचार क्यों नहीं आता कि ये सब कितनी सुरक्षा कर पाएंगे? विपत्ति तो मेरे अपने किसी असाता कर्म की वजह से आई है, और उस असाता कर्म को नष्ट करने के लिए तो मुझे सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण ही लेनी चाहिए। बाकी सब मेरे असाता कर्म को तो ढीला नहीं कर पाएंगे, असाता कर्म को तो ढीला करने वाले, उसे नष्ट करने वाले यही हैं। इनका भी आलंबन लेऊं और जैसे जैसे मेरी असाता घटेगी, साता का उदय आएगा, ये जो दिख रहे हैं वे सब सहाय हो जाएंगे। इनका सहारा मुझे तभी तक है जब तक मेरे साता का उदय है, और इनका सहारा अगर आज नहीं मिल रहा है तो मेरे असाता का उदय है, मेरी विपत्ति का कारण मेरे असाता का उदय है। ऐसा कभी ध्यान नहीं जाता है, मैं तो सिर्फ उस ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं। ऐसी स्थिति अपनी नहीं है अभी। कोई महामुनि वास्तव में जो इस आशरण अनुप्रेक्षा का वास्तव में अनुभव करते हैं वे ऐसा विचार कर पाते होंगे, वे उस चीज को वास्तव में महसूस कर पाते होंगे। हम और आप तो अभी संसार में इतना भी कर लें कि जब हमें अहंकार आ जावे या संक्लेश में हम पड़ जावे या कि हम अपने को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगें, तब उस समय लगे कि कोई है जो कि हमें सुरक्षा दे सकता है, और वो कोई है तो हमारे परिणामों को अच्छा बनाने में कारण सच्चे देवगुरु शास्त्र, वे ही मुझे सुरक्षा दे सकते, वे ही मुझे निश्चिंतता दे सकते हैं, वे ही मुझे स्वावलंबी बना सकते हैं। बस इतना छोटा सा विचार यदि हम कर सकें तो बहुत आसानी से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की इस प्रक्रिया में और शामिल होकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, शायद उससे और बात स्पष्ट हो। बात स्पष्ट किसी दूसरे के समझाने से नहीं होती, बात स्पष्ट अपने भीतर उसे ठीक समझने से होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। कोई कितना भी माथा पटक ले दूसरे को समझाने का, लेकिन जब तक कि वो स्वयं समझना ना चाहे तब तक कोई नहीं समझा सकता। तीर्थंकर भी आकर के हमें नहीं समझा सकते, तैयारी हमें समझने की करनी होगी। इसलिए जब जब भी अपन कोई बात समझने के लिए बैठें तब तब ये ध्यान रखें कि समझना तो मुझे ही पड़ेगा। कोई मुझे समझा दे वो तो सिर्फ समझाने में कारण बन सकता है। अगर समझ में नहीं आया है तो समझाने वाले की कमी नहीं है, कमी मेरी है कि मैंने ठीक से समझा नहीं। आज तक मैं अपने ही कल्याण की बात दूसरे से भी नहीं समझ पाया, बताइए आश्चर्य लगता है। हम कितने कमजोर हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए दूसरे की मदद चाहिए, हम अपने कल्याण के लिए स्वयं अपने भीतर कोई विचार उत्पन्न नहीं कर पा रहे। करना चाहिए, ऐसा हमारे भीतर सामर्थ्य है कि हम स्वयं ही अपने भीतर एक ऐसी समझ पैदा करें जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया स्वयं हासिल कर सकें। अभी तो हमें दूसरे के द्वारा बताई हुई बात भी सहसा समझ में नहीं आती, अभी तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा जिससे कि हमें स्वयं ही अपने भीतर से वो बात समझ में आने लगे। कोई विरले ही तीर्थंकर की हैसियत के जीव होते हैं जिन्हें बिना किसी के बताए हुए और क्या है मार्ग अपने जीवन को अच्छा बनाने का, पर हम इतने कमजोर लोग हैं। आचार्य भगवंतों के द्वारा दिए गए उपायों को भी हम अपने जीवन में पूर्णतः और हासिल नहीं कर पाते हैं, उनकी बताई हुई बात को भी हम ठीक से अपने जीवन में नहीं समझ पाते। समझने का मतलब ये नहीं समझना, बुद्धि समझ लेती है, जीवन में समझ में आने की बात यानी जब तक कि वो जीवन में धारण ना हो जाए तब तक समझना समझ में नहीं आई है। जिस दिन धारण हो जाए उस दिन समझना कि आ गई समझ में, अभी नहीं आई है। अभी इस धोखे में नहीं रहना कि मेरे समझाने से सब समझ में आ गया, मुझे कैसेट सुन लूंगा कैसेट में और सब समझ में आ जाएगा, ना आएगा तब तक समझ में जब तक कि जीवन में नहीं आएगा। जिस दिन जीवन में आ जाए उस दिन समझना कि हाँ आ गया समझ में, उस दिन पीठ थपथपाना अपनी की अब आया समझ में। जिस दिन विपत्ति आ जाए और उस दिन मैं विपत्ति के समय सबसे प्रसन्नता पूर्वक कहूं कि डोंट फियर, अभी आता हूं भगवान की पूजा पाठ करके, इसमें कोई कमी नहीं लाऊंगा मैं रोज पूजा पाठ करने जाता हूं जाऊंगा, विपत्ति आई है आई होगी। जिस दिन घर में बहुत बढ़िया माहौल हो, जिस दिन शादी विवाह का माहौल हो, सुबह से शाम तक एकदम व्यस्त है जीवन, उस दिन क्षण भर के लिए याद आ जाए कि क्या कर रहे हो ये सब व्यर्थ है, चलो पूजा पाठ तो ज्यों की त्यों करेंगे। नहीं आज तो व्यस्त हैं आप, शादी का माहौल है, आप देख ही रहे हैं अब आज महाराज जी अब ऐसे में पूजा कैसे कर, आप कल कर लेंगे, आज क्या करें, आज तो बहुत व्यस्तता थी और बच्चों की परीक्षा चल रही है और उनके परीक्षा के दौरान भी हमें बहुत व्यस्त रहना पड़ता है और समय ही नहीं मिला भगवान के दर्शन करने जाने, तब समझ में आएगा कि किसको शरण माना है। अगर शरण समझ में आ गई है तो फिर उसको नहीं भूलेंगे हम, बाकी ये सब चीजें भले ही भूल जाएं। अभी तो हम भगवान के मंदिर जाना भूल जाते हैं, आज पूजा करना भूल गए हैं, आज तो जो चीज त्यागी थी वो त्याग की चीज ही भूल गए हैं। आज तो अपने परिणाम संभालने ही भूल गए हैं, आज तो अपने परिणाम ही बिगाड़ दिए, तब मानेंगे कि हाँ समझ में आ गया। मैं आपको वो छोटी सी घटना कह रहा था, वो बीच में ही रह गई, पता नहीं क्यों ऐसा विचार आ गया कि इतनी सारी बात और कह दी, ये कहने का कोई विचार नहीं था मेरा, पर हो जाता कई बार इस तरह का, मैं घटना सुनाने के लिए बैठा और उसमें इतनी सारी बात आ गई, ये बीच में ही आ गई। एक माँ के दो बेटे थे, बहुत मुश्किल से हुए थे, बहुत दिनों के बाद हुए थे, बहुत प्यार था उन माता पिता को अपने, दोनों जुड़वा पुत्र थे, और एक दिन दो दिन के नहीं हुए थे, 20 बरस हो गए थे, 20 बरस से वे उनके साथ में थे। और एक दिन सुबह सुबह दोनों ने कहा कि नदी में नहा करके आते हैं, मां तुम जब तक खाना बना के तैयार रखना। उन्होंने कहा जाओ, पिता भी तब तक लौट आएंगे, तुम भी उतने समय तक लौट के आना, हम खाना तैयार रखते बना करके। और माँ यहाँ खाना बनाने में लगी है और वहां बाहर शोरगुल होता है, किसके बेटे हैं, सारे मोहल्ले में ये पूछा जाता है कि 20-20 बरस के ट्विंस किस परिवार के हैं। तो फौरन ही सबको मालूम था, मोहल्ले भर के लोगों को, उन्होंने कहा वो घर देख रहा ना, वो उनके हैं। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, दोनों स्नान करते करते और प्राणांत हो गए, दोनों की लाशें दरवाजे के बाहर रख दी गई हैं। यही घर है? हाँ यही घर है, रख दो यहीं पर उतार करके, रख दी गई। कौन जाए भीतर मां से कहने के लिए, पर कहना तो पड़ेगा। उस शोरगुल में कोई कहे या ना कहे, मां खुद बाहर उठ करके आकर के देखती है तो दोनों पुत्र मृत सामने पड़े हुए हैं। क्या करना चाहिए था मां को? दहाड़ मार करके, चीख करके और उन्हीं पर गिर जाना चाहिए था, तब तो कहलाएगा कि मां है, नहीं तो काहे की मां, इतने भी प्यार नहीं है, ऐसे ही ना। क्योंकि यही तो थे सहारे दो, लाठी की तरह जीवन के अंत में, और ये दोनों चले गए, बा मुश्किल मिले थे इतने वर्षों के बाद। और मां चुपचाप खड़ी हुई है क्षण भर के लिए, उस समय उसे अपनी शरण याद है कि सचमुच कोई शरण नहीं है, शरण तो मेरे अपने परिणाम है, मुझे बिगाड़ना नहीं है, जाओ इन दोनों को चादर में ढककर कमरे में रख दो, अभी इनके पिता आने वाले हैं, भूखे प्यासे आएंगे, अगर इन्हें देखेंगे तो ठीक से भोजन भी नहीं कर पाएंगे, जाओ जल्दी से रख दो। कैसा लगेगा? इतनी निर्मोही है मां, रखवा दिया है। और पिता आए हैं, दोनों बेटे कहां हैं? नदी में नहाने गए, आते होंगे, आप नहा धो करके भोजन कर लें, भोजन करने बैठे हैं, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या पूछनी है? बहुत दिन पहले अपन ने घर में व्हाइट वॉश करने के लिए बाजू वालों से सीढ़ी ली थी ना? हाँ हाँ ली तो थी, सीढ़ी ली थी। वो आए थे, अपनी सीढ़ी मंगा रहे थे, मैंने आपसे बिना पूछे दे दी। अरे तो इसमें मेरे से क्या पूछना था, उन्हीं की, अपनी तो थी नहीं। अच्छा किया, दे दी, अच्छी बात है, उनकी थी इसलिए उनको देने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना व्यथित होने की आवश्यकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, भोजन करने के बाद आओ मेरे साथ कमरे में, ले करके चद्दर अलग करती है, 20 बरस के लिए हमें मिले थे, इनका संयोग हमारे साथ 20 बरस का था, आज इनके जाने का बुलावा आ गया, मैंने आपसे बिना पूछे इन्हें विदा दे दी है, आप दुखी मत होना। हो सकता है ऐसा? भूतो न भविष्यति, अपने बस का नहीं है, ऐसे ही ना। लेकिन जिस दिन ये अपने बस का हो जाएगा उस दिन अपन जीत जाएंगे, अभी अपन हारे हुए हैं, अभी ये अपने बस का नहीं लगता कि ये तो बहुत कठिन मामला है। लेकिन ये जिस दिन ऐसी दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी, उस दिन समझना कि हाँ अब हम इतने अधिक सक्षम हो गए हैं, इतने स्वावलंबी हो गए हैं, हमें अब मालूम पड़ गया है कि शरण क्या है। बहुत कठिन है, पर फिर भी स्मृति में इन चीजों को रख करके और हम अपना जीवन जिए, तब भी हम छोटी छोटी चीजों से जल्दी से व्यथित नहीं होंगे। थोड़े से सहारे और आलंबन के छिन जाने पर या थोड़े से बढ़िया से सहारे और आलंबन मिल जाने पर ना हम अहंकार करेंगे ना हम संक्लेश करेंगे। अगर ये स्थिति हमारी बन जावे तो हमारा जीवन अच्छा बनने में देर नहीं लगेगी। इसी भावना के साथ कि हम ऐसी दृष्टि प्राप्त करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बन सके। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर बोलिए।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब नहीं है। हर सोच सोचते हैं पल की खबर नहीं है। सब कुछ दुनिया के बारे में सोचते हो, कभी खुद पे सोच विचार करो। दुनिया के बारे में सोचते हो, कभी खुद पे सोच विचार करो। औरों की छोड़ो खुद पहले, तुम भव सागर को पार करो। दुनिया के बारे में सोचते हो, कभी खुद पे सोच विचार करो। मिट जाएगा हाहाकार, प्यार से रहा करो। मिट जाएगा हाहाकार, प्यार से रहा करो। मिट जाएगा से रहा करो, मिट जाएगा हाहाकार, प्यार से रहा करो। अच्छी नहीं तकरार, प्यार से रहा करो, मिट जाएगा प्यार से रहा करो।